ये आकाशवाणी है। अब आप विनय सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि ऐसे 1,00,000 युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। आज राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस पर श्री मोदी ने कैडेट के रूप में अपने दिनों का स्मरण किया और युवाओं से एनसीसी से जुड़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने बढ़ते शहरीकरण का कारण गौरैया के अस्तित्व के खतरे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बच्चों के जीवन में गौरैया को वापस लाने के लिए किए जा रहे कुछ अनूठे प्रयासों के उदाहरण भी दिए। श्री मोदी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान ने केवल 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। उन्होंने पूरे देश में लोगों से इस अभियान में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में ओडिशा पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे। उड़िया विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। संसद के कल से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सदस्यों से संसद की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। आकाशवाणी समाचार को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में श्री बिरला ने उम्मीद जताई कि सांसद सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा की परंपरा में योगदान देंगे। आरक्षण के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए श्री बिरला ने कहा कि राजनीतिक दल इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने कभी भी आरक्षण के प्रावधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। मंगलवार को मनाए जाने वाले संविधान दिवस से पहले श्री बिरला ने संविधान पर खतरे के सभी दावों को खारिज किया। संसद की कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर इटली की 3 दिन की यात्रा पर राजधानी रोम पहुंच गए हैं। वे G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए यहां से फियोगी रवाना होंगे। भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस दौरान डॉ जयशंकर की अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से भेंट करने की भी संभावना है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रोम में 10वें MED मेडिटेरेनियन डायलॉग में भी भाग लेंगे। डॉ जयशंकर रोम में भारत के दूतावास के नए परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन ने आज झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले राज्य में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना। सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल गंगवार से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि उन्होंने गठबंधन सहयोगियों का समर्थन राज्यपाल को सौंपा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री सोरेन ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को होगा। उधर भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने से पहले गठबंधन की तीनों पार्टियां अपने अपने विधायक दल की अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने शिकायत समाधान में तेजी लाने के लिए अपने कन्वर्जेंस कार्यक्रम के तहत 1,000 से अधिक कंपनियों के साथ भागीदारी की है। ये कंपनियां ई कॉमर्स, निजी शिक्षा, FMCG, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, खुदरा दुकानें, ऑटोमोबाइल और बैंकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इन कन्वर्जेंस कंपनियों से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन समाधान के लिए सीधे उनके पास स्थानांतरित किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के 3rd दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 12 रन बना लिए हैं। ये टेस्ट जीतने के लिए उसे 534 रन बनाने हैं। इससे पहले विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के शतकों ने भारत के स्कोर को 6 विकेट पर 487 तक पहुंचाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।